ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஹமே குச் மாலூம் நஹீ தா, சப் குச் சீஜ் பதாயா கயா, மானே பஹலே கஹ தியா கி மே தேரி மா ஹூ, யே பி மாலூம் நஹீ தா. बच्चा थोड़ी जानता है मां को. फिर मां धीरे से दो चार महीने के बाद कहते हैं, वो जो दिखता है ना गड़बड़, वो तेरा बाप है. बाप है मालूम पड़ता है. फिर दादा दादी, एक एक चीज का इंट्रोडक्शन होता है, पहचान कराई जाती है. बालक कुछ नहीं जानता है. तो वी आर बॉर्न इग्नोरेंट. हम जन्म से बिल्कुल अज्ञान के साथ पैदा होते हैं. इस जगत को भी नहीं जानते हैं और अपने आत्मा को भी नहीं जानते हैं. धीरे धीरे स्कूल में गए, केजी में गए, किंडल गार्डन में गए, धीरे ए मानी एप्पल, बी मानी क्या बैट, सी मानी कैट, डी मानी डॉग. हिंदी में पढ़ने जाए तो ग मानी गणेश. सिखाएंगे, पहचान करेगी. मालूम नहीं था, इतना जानता गया, अब तो एमए हो गया, पीएचडी हो गया, है ना. आगे आगे बढ़ता जाता है. एक जन ने मुझे कहा कि मैं डबल एमए हूं. तू तो कभी कॉलेज में नहीं गया, डबल एमए कैसे हो गया? मैं मामा हूं इसलिए. मामा है ना, एमए एमए दो बार है. डबल एमए. इतना इतना पढ़ता गया, पीएचडी तक, डीलिट तक हो गया. सो मेनी डिग्रीज, यू नो, यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, यू आर लॉयर. इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर भी अज्ञान पूरा का पूरा जाता है कि बना रहता है? अवर कैपिटल इज इग्नोरेंस. हमारा मूल मुड़ी क्या है, जन्म से क्या है? अज्ञान. और रोज आते हैं प्रेमपुरी में. यहां कुछ लोग आते हैं जो अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अज्ञान में और गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे भी आते हैं. तो यहां सब प्रकार के लोग आते हैं. तो अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, पढ़ाते हैं ठीक तरह से. पर जितना भी अज्ञान जाए, फिर भी पूरे पूरा कभी जाएगा? हाँ? नहीं जाएगा. इसलिए कहते विद्या ददाति विनयम. जितना ज्यादा जानोगे, इतना जानोगे कि कितना नहीं जानता हूं. हाँ, इसलिए विद्या ददाति विनयम. एक दूसरा भी अज्ञान है, वो अपने आत्मा के विषय में. मैं कौन हूं? मैं जो अपने को मान रहा हूं, उसमें मुझे ही संशय है कि मैं वो हूं कि नहीं हूं. इसलिए यहां सुनने हर रोज आते हैं कि स्वामी जी बताएंगे कि मैं कौन हूं. आपके विषय में मुझे बताना, मैं आपका नाम तक नहीं जानता है, फिर भी आप मानते हैं कि मैं आपको आपके साथ पहचान कराऊंगा. आत्मज्ञानम. इसलिए दो प्रकार की अविद्या मानी गई है, मूला विद्या, तूला विद्या. अपने आत्मा को न जानना मूला विद्या है, और अन्य अनात्म पदार्थ को न जानना तूला विद्या है. अपरा विद्या के द्वारा हम जगत के विषयों को जानते हैं. ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, प्राणी शास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और अपना अज्ञान दूर करते हैं. एक बात याद रखना, लिख के रखना, मोर इन्फॉर्म्ड यू आर, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ यू लिव. जितना व्यक्ति जितना ज्यादा जानकार है उसके जीवन का स्तर इतना ही ऊंचा रहेगा। आप लोग को मालूम नहीं है कि मालूम होगा, द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक इज सो बिग, इस संगीत का जो जगत है बहुत बड़ा है। वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, भारतीय अभारतीय संगीत, भारतीय में भी ये जो शास्त्रीय संगीत है उसमें भी क्या उत्तर भारत का म्यूजिक को क्या कहते हैं, भारतीय संगीत, और दूसरा क्या है कर्नाटक, कर्नाटक में भी बहुत है आगे, भारतीय संगीत में भी आगे क्या है हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं उसको, उसमें फिर घराना है, ये है बहुत उसमें भी है, ये वैष्णव लोगों का क्या है हवेली संगीत है। पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, सीखते जाओ, एक जीवन भी क्या है कम है, पर जितना संगीत का अभ्यास करोगे इतना आपका जीवन का स्तर क्या होगा, सूक्ष्म हो जाएगा। संगीत समझते हैं उनको जो संगीत का आनंद आता है, वो ना समझ को ताल का ही आनंद आता है, और कुछ समझ में आता है नहीं उसको। ताल का आनंद तो कुत्ते को भी आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी समझता ताल क्या है। सो विद्या ददाती, बहुत आनंद देती है। इसलिए एक बात है, जीवन में उम्र कितनी भी हो जाए अध्ययन कभी छूटे नहीं, लर्निंग शुड नॉट हैव फुल स्टॉप, लाइफ कैन हैव फुल स्टॉप नॉट लर्निंग। जितना भी हो सके कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, और हमको नहीं मालूम है ये तो हमको मालूम ही है पहले से, किसी को भी पूछ सकते हैं मुझे नहीं मालूम सिखाओ, सीख सकते हैं। वो क्या सोचेगा आपको मालूम नहीं है, एक दिन उसको भी मालूम नहीं था, सीखो, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, आई डोंट नो इट्स नॉट अ क्राइम, मैं नहीं जानता हूं ये कोई गुनाह नहीं है, जानो। इसलिए अविद्या मेरे पास है, पर ये अविद्या एक काम करती है, जो नहीं है जहां जो चीज नहीं है वहां दिखा देती है, इसको कहते हैं अतस्मिन तद्बुद्धि ही, निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट वस्तु बुद्धि ही, जो चीज जहां नहीं है उसको दिखा देती है। आपको बता दिया गया कि आश्रम में बहुत सांप है, और आपने देखा एक फणा चढ़ा के सांप है, आप डर गए रात को, और बाद में देखा एक रबर का सांप वहां था, तो रबर के सांप को सच्चा सांप किसने माना, किसने माना, आपने माना, किसके कारण, वो रज्जू रबर के सांप के अज्ञान के कारण उसको सच्चा कोबरा मान लिया, कृष्ण सर्प मान लिया। तो ये अविद्या का काम है, जो चीज जहां नहीं है उसको भी वहां प्रतीत करा दे। कई बार ऐसा होता है, रोज होता है आपके जन्म में, हम चल रहे थे, हमारे साथ कोई और चल रहा था, मैंने कहा लड़की आ रही है सामने से, तो उन्होंने कहा है लड़की नहीं ये लड़का है, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा बेटा है, उन्होंने कहा, उनको आप उनके पिताजी है कि नहीं मैं उनकी मां हूं। अब आप देखो डबल अध्यास हो गया है ना। आजकल तो बाल भी ऐसे रखते हैं, बुट्टी ये सब पहनते हैं, मालूम नहीं पड़ता है, पूछना पड़ता है, जब बोलते तो भी आवाज ऐसी होती है मालूम नहीं पड़ता है, तो क्या करो राम। तो वहां अतस्मिन तद्बुद्धि किसके कारण हो गई, लड़के को लड़की मानना, लड़की को लड़के मानना, अध्या। अच्छा ऐसा होता है, कई बार लोग ऊपर से वीक, तिरुपति मालूम है ना, तिरुपति में सबसे बड़ा धंधा बाल का है, ये सब उतारते थे उनकी वीक बनाते, मेरे को कोई भी बाल की वीक पहने तो उस पर तिरुपति का प्रसाद है उसके पास, तो किसी का बाल देखा आप चकित हो गए, अरे इतने काले काले सुंदर बाल, और आप पूछते भी है आप कौन सा तेल लगाते हैं इसको क्या कहते हैं? अध्यास। वह है अंदर, बिल्कुल एक बाल नहीं अंदर, उसके ऊपर बाल का क्या हो क्या है? अध्यास। मालूम है अध्यास कौन कराता है? अविद्या। रोज भूल हो जाती है, एक को दूसरा मानना, दूसरे को पहला मानना, इसको कहते हैं अध्यास अविद्याकृत दोष। अब आप फिर से दृष्टांत पे, विश्वम निजांतर्गतम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। ये जो विश्व है हमारी भीतर दिख रहा है, किसके कारण दिख रहा है? जैसे दर्पण में नगरी दिखती है ऐसे ये हमारे भीतर दिख रहा है, भीतर ही है दिख रहा है, चैतन्य आत्मा भी दिख रहा है, पर अविद्या मायाया क्या होता है? वो जैसे बाहर है ऐसा दिखता है। समझ में आ गया? नगरी हमारे भीतर दिखने पर भी ऐसा लगता है नगरी बाहर है। निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायाया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया। आत्मनि स्वप्रकाशे प्रतीति विषय आश्रये अविद्यया मायाया बहि। निद्रा हरेक प्राणी को प्राप्त होती है। जागृत में इंद्रियों के सहायता से अंतकरण बाह्य विषय शब्द स्पर्श और रूप रसगंध का अनुभव करता है, व्यवहार करता है, आदान प्रदान होता है। आंख से रूप दिख रहा है, मन रूप को दिखा रहा है और मैं सूर्य को जानता हूं, ये जागृत अवस्था है जहां बाह्य अर्थों की उपलब्धि होती है इंद्रियों के द्वारा। यही जो मैं हूं, जब निद्रा आरूढ़ हो जाता हूं तब मन भी सो जाता है, इंद्रियां भी सो जाती है, न बाह्य जगत प्रतीत होता है न मन में कुछ दिखता है, दोनों सुप्त गुप्त है। हरेक मनुष्य जागृत से हमेशा स्वप्न सुषुप्ति में जाता है, सुषुप्ति से फिर वो जागृत हो जाता है, उसको कहते हैं अर्ध विकास है। इतना ही जागता है, मन जाग जाता है, पांच ज्ञानेन्द्रियां सो रही है, इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस का बोध नहीं होता है, आंख बंद है और मुंह भी बंद है, स्वाद भी नहीं लेता है, सोया हुआ है, फिर भी मन जाग जाता है तो मन में पहले देखे हुए विषयों के संस्कार पड़े हैं। हमने आम खाया है, वो भी लंगड़ा खाया है, जिसने आपूस को पछाड़ दिया ऐसा लंगड़ा खाया है, तो लंगड़ा का स्वाद कहां बना है? मन में बना है और उसका संस्कार है। अभी मैं जाग जाता हूं आधा स्वप्न में, क्या देखता हूं कि हमको रत्नागिरी आपूस कैरी मिल गई और मैं क्या कर रहा हूं? सबसे कैरी का मैंने एक कैरी आम का मैंने एक नियम रखा है, अकेले खाना। आम कैसे खाना चाहिए? अकेले खाना चाहिए, बांटना पड़ता है ना, इसलिए अकेले खाना बढ़िया है। और सब चीज बांट दो, केला सब ले जाओ, पर आम क्या खाने का है? अकेला खाने का है ना, तो आम खाते हैं। उस समय जो आम है आप जो खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और सचमुच आम खाने का मजा क्या है? उसका ऊपर का वो डीटा निकाल के फिर उसको बराबर गला के सीधा पीने का, वो जो आनंद है वो दूसरा है। काटना फटना तो गड़बड़ है, ऐसे पुराना ढंग। और उस समय अकेले नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं भी स्प्रे हो सकता है दूसरे पे, इसलिए अकेले अच्छा है। बचपन में हम लोग को याद है पूरे कपड़े निकाल के देते थे लोग, हाथ में आम खाओ, सब जगह स्प्रे करो, कोई वादा नहीं है। अभी ये दृश्य है, आप लोग की मजा आ गई। हाँ, आम खा रहे बड़े प्रेम से, चूस रहे, उस समय वो आम आपके भीतर दिखता है कि बाहर स्वप्न में? प्रेमपुरी वाले सुबह सुबह इतने कंफ्यूज होते हैं। मैं चिमन भाई को कहूंगा कल से सबको चाय पिला के लाइए, यहां एक स्टॉल खोल दीजिए, मशीन लगाइए, सबको चाय पिलाइए। वो आपके भीतर दिख रहा है कि बाहर दिख रहा है? वो है भीतर, पर उस समय क्या दिखता है? सच्चा आंसर क्या है? आम बाहर का आम खाते कि अंदर का आम खाते हैं? हाँ, अंदर का आम खाते हैं कि बाहर का खाते हैं? बाहर का खाते हैं आम। उस समय तो स्वप्न में तो बाहर का आम दिखता है, आम बाहर दिखता है कि अंदर दिखता है स्वप्न में? तुम्हारे बुद्धि के अंदर दिखता है आम, उस समय ऐसा लगता है कि आम अंदर है, मैं अंदर का आम खा रहा हूं और बाहर कुछ आम नहीं, ऐसा दिखता है? उस समय क्या दिखता है? मैं अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा हूं और अकेला अकेला आम खा रहा हूं और दरवाजा बंद रखा है, कोई आए नहीं है ना, और ऐसे समय खाता हूं, कोई आ भी नहीं सकता है रात को 11 बजे। इस प्रकार समय भी है रात का, टीवी भी चलता है और मैं बड़े प्रेम से आम चूस रहा हूं। उस समय वो डाइनिंग टेबल, वो घर, वो टीवी सब कहां है? कहां दिखता है? बाहर दिखता है। पर है कहां? किसके कारण बाहर दिखता है? माया। स्वप्न का जगत तुम्हारे भीतर होने पर भी बाहर बाहर है ऐसा दिखता है, बाहर है ऐसा दिखने पर भी वो कहां है? अंदर है। अंदर होने पर भी इसको क्या बोलते हैं? अविद्या। जो एक को दूसरे पे, दूसरे को पहले पे कर दे, भीतर को बाहर कर दे, बाहर को भीतर कर दे। इसी प्रकार से देखो, मालूम पड़ा, उद्भितम आविर्भूतम पश्यन अवलोकयन यथा निद्रया। समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ते हैं। उस समय कोई आया और उसने आपको कहा बाबू भाई करके जोर के जगा दिया, तो आप क्या गए? जग गए। फिर क्या किया? आम रख के हाथ पांव धोए, मुंह साफ किया, कुल्ला किया, उनको भी आधा दिया। ये सब करते हैं तो उनको थाना भेजना पड़ेगा। एक ही बात का दुख है, आप बाबू भाई को कहेंगे अरे भाई आम तो पूरा करने देना था, बीच में से कहां उठा दिया आपने? आम का मजा आपको आया न, वहां आम है। प्रबोध समये जब उठ जाते हैं स्वप्न से, तो आम भी मैं, खाने वाला भी मैं, वो डाइनिंग टेबल भी, टीवी भी मैं, सब कुछ मैं। स्वात्मानमेवाद्वयम्, मेरे से भिन्न कोई चीज नहीं थी, फिर भी मुझसे भिन्न दिख रहा था। अभिन्न होने पर भी भिन्न दिख रहा था। उस समय क्या था? केवल चैतन्य आत्मा ही था और अविद्या दोष के कारण ये आम और आम खाने वाला स्वामी और टीवी दिख रहा था। ये सब दिख रहा होने पर भी वो चैतन्य आत्मा से अभिन्न है कि नहीं है? पर चैतन्य आत्मा में कोई फर्क पड़ा? आम दिखने से खट्टा हो गया, मीठा हो गया, गंदा हो गया? जो का त्यों भरपूर। इसी प्रकार से ये जगत जो आपको दिख रहा है बाहर के भीतर, सुबह सुबह खोपड़ी चाट जाता हूं मैं, अभी कहां दिख रहा है? बाहर है, यही कहना, बाहर दिख रहा है। अगर बाहर नहीं दिख रहा है आप घर कैसे पहुंचेंगे? अंदर दिखता है तो यहीं बैठे रहना पड़ेगा। कहां दिखता है स्वामी भी? कहां दिखता है? स्वामी बाहर का ही है, गुजरात का है, यहां का नहीं है, तो बाहर दिख रहा है। और है कहा, निजांतर्गतम ये दृश्य विश्व प्रपंच पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा मालूम पड़ता है। कहां? वृत्ति रूप में अंदर। वृत्ति भी अंदर है, वो कहां किसके द्वारा मालूम पड़ती है? प्रत्येक चैतन्य के द्वारा मालूम पड़ती है। इसलिए जागृत जगत बाहर दिखने पर भी आत्मा से अभिन्न है, और आत्मा की अज्ञान के कारण इस समय वो क्या दिख रहा है? बाहर दिख रहा है। स्वात्मानमेवाद्वयम्। एक बात याद रखना, जागृत और स्वप्न दोनों में ज्यादा सत्य कौन है? जागृत है। पर मांडुक्यकारी का आकार कहते हैं, ज्यादा और कम सत्य कहना जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही हमारे पास व्याप्ति है, यद् दृश्यम तन्मिथ्या। जो भी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा या मन के द्वारा दृश्य होता है, आत्म चैतन्य का भी जो विषय बनता है, चित्तवृत्ति स्मृति इत्यादि, सुख दुख इत्यादि, और चित्तवृत्ति का भी विषय बनता है कौन? ये जगत। जो दृश्य है, ग्राह्य है, दृश्य है, वो मिथ्या है। मिथ्यावाय दृश्यत्वात्। जागृत मिथ्या, क्यों? दृश्यत्वात्। स्वप्न मिथ्या, क्यों? दृश्यत्वात्। दोनों दृश्य है, इसलिए क्या है? मिथ्या है। सुबह सुबह कभी कभी बहुत बड़ी बात भी कही जाती है, जरा उसको आत्मसात करने में तकलीफ होती है, पर एक लक्षण दिया उन्होंने, जागृत और स्वप्न में हम लोग भेद मानते हैं, पर सचमुच में दोनों क्या है? दोनों मिथ्या है। एक वाक्य याद रखना, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। जितनी भी मिथ्या या प्रतीत होने वाली विकल्पना है, प्रतीतियां है, वो कभी निरधिष्ठान नहीं होती है। सांप भी दिखता है तो किसके कारण दिखता है? अगर रज्जु न हो तो सांप न दिखे। आकाश की नीलिमा भी दिखती है तो किसके कारण दिखती है? आकाश के कारण दिखती है। ये लड़के को लड़की मान लिया क्यों? लड़का था इसलिए, कोई तो था, ऐसी लड़की किसी को नहीं मान सकते, एक कुर्सी को लड़की नहीं मान सकता, वहां कोई था। तो विकल्पना निर्दिष्टान नहीं होती। अगर मैं चैतन्य आत्मा नहीं होता तो न तो स्वप्न मालूम पड़ता, न तो जागृत मालूम पड़ता। दोनों का अधिष्ठान कौन है, आश्रय कौन है, प्रकाशक कौन है, अवभासक कौन है? तो कहते हैं ये चिदात्मा। इसलिए कहते हैं अभी ये दोनों अधिष्ठान से अभिन्न है। अधिष्ठान चैतन्य आत्मा अद्वय है, द्वैत उसमें प्रतीत होने पर भी वो अद्वितीय ही है, अद्वितीय होने पर भी द्वैत उसमें प्रतीत होता है। दर्पण में दृश्य नगरी के कारण दर्पण का कुछ विकार नहीं होता है, वो कहता रहता है असंग रहता है। आप देखें तो वहां बिल्कुल उसका एक धरा है, सीधी सपाटी है, वहां तो सरफेस है और कुछ नहीं है, दिखने पर भी वहां कुछ नहीं है। इसी प्रकार के चैतन्य आत्मा में ये जागृत दृश्य दिखे या स्वप्न दृश्य दिखे, चिदात्मा केवल अद्वय है। यह अद्वय आत्मा ही दक्षिणामूर्ति का स्वरूप है। जो प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् ये जानता है, जागृत होता है। याद रखना, हम लोग अनादि काल से सोए हुए हैं। किसके प्रति? आत्मज्ञान के प्रति, आत्मा के स्वरूप के प्रति। प्रबोध समये साक्षात जब करते हैं बोध हो जाता है। और एक बात है, बोध एक बार हो गया फिर जाता नहीं है, अज्ञान जाएगा वापिस आएगा नहीं, और अज्ञान आने के बाद जाएगा नहीं। तो आप लोगों को एक दिन कौतूहल था कि बिजली क्या होती है ना, बच्चों को होता है ये बिजली है, वायर में बिजली है, ये बिजली दिखती नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग बचपन में क्या किया, एक दिन वायर खुला था, चालू था लाइव वायर, उसको भूल से टच कर दिया, फिर क्या हुआ, विद्युत शक्ति का साक्षात्कार हो गया, डायरेक्ट रियलाइजेशन। इसके बाद आपको कभी याद रखना पड़ेगा ये बिजली है, इसको छूना नहीं, कहना नहीं पड़ता है, कैसा हो गया उसका। फिर जब करते हैं बिजली का करण लगता है, बिजली का कोई जब की भी आवश्यकता नहीं, क्यों, एक बार ज्ञान हो गया फिर जाएगा नहीं। गरम गरम चीज जीप पे रख गई, जल गए, एक बार कितनी बार देखना पड़ता है, अग्नि गरम है, एक कितनी बार, एक ही बार। बच्चा एक बार अंगारे से जल जाता है फिर कभी छुएगा, ये सब कुछ जाना पड़े, एक बार जलना पड़ता है, एक बार करंट लगाना पड़ता है कि नहीं, नहीं तो सीखते नहीं है। एक बार ज्ञान हो गया, ऐसा हो सकता है जिसको पानी में तैरना आता है वो कहता है तो मैं तो भूल गया, इसके कारण पानी में डूब गया, ऐसा हो सकता है, एक बार आ गया तो। इसलिए मत चिंता करना, स्वामी जी अध्यात्म विद्या मंदिर में रोज जाते, ज्ञान हो गया उस दिन तो आपके कारण हो गया, फिर घर गया तो क्या हो गया, चला गया, फिर क्या कर, जो चला गया वो पहले था ही नहीं, ओके, जो चला जाता है वो वही नहीं था। इसलिए ये भी चिंता मत करना, गत्वा न निवर्तन्ते, वापिस आता नहीं है। प्रबोध समये स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्तये, जिनको ये ज्ञान है वही गुरु मूर्ति है, जिन्होंने ज्ञान कराया वो गुरु मूर्ति है, और मुझे ज्ञान हुआ क्या कि गुरु मूर्ति से मैं अभिन्न हूं। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नम इदम, मेरे नमस्कार है दक्षिणा मूर्तये, वही दक्षिणाभिमुख तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले वही गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति है। ओम शांति शांति शांति।